दिन भर एक नवंबर दिन गुरुवार, मैं हूं वात्सल्य राय। 2019 के आम चुनाव के लिए गैर बीजेपी दलों को एक मंच पर लाने को चंद्रबाबू नायडू की पहल राहुल गांधी से भी मिले।
नायडू जी और हमारी बात हुई और हम सब मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे।
श्रीलंका में सोमवार को संसद का सत्र हटाए गए पीएम विक्रमासिंघे का दावा, मेरे पास है बहुमत, लेकिन इस दावे में कितना दम।
प्राइम मिनिस्टर के सीट पे राजपक्षा बैठेंगे, विक्रमसिंघे नहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि पल्ला राजपक्षा के तरफ है।
और आखिरी वनडे में भारत की वेस्टइंडीज पर 9 विकेट से धमाकेदार जीत, सीरीज पर भी कब्जा।
रोहित शर्मा वाज द वन हु स्कोर्ड द विनिंग रन्स, किंग कोहली एंड हिज मेन।
होंगे आपके पत्र भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सर्वप्रिया सांगवान से। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने इस गठबंधन को लोकतांत्रिक मजबूरी बताते हुए कहा कि देश और लोकतंत्र बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए से अलग होने के बाद नायडू की राहुल गांधी से ये पहली मुलाकात थी। राहुल और नायडू ने कहा कि देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही हैं। इंटरनेट कंपनी गूगल के कर्मचारियों ने कंपनी के दुनिया भर के दफ्तरों के बाहर महिला कर्मचारियों के साथ हुए व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। बीबीसी संवाददाता के मुताबिक गूगल में महिलाओं को नौकरी पर रखने के तरीके, वेतन और उनके प्रति व्यवहार को लेकर गुस्सा बीते कई महीनों से बढ़ रहा था। कंपनी ने बीते 2 साल में यौन उत्पीड़न के आरोपों में 50 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। हमारे संवाददाता के मुताबिक ये अमेरिका की सिलिकॉन वैली स्थित दुनिया की बड़ी तकनीक और इंटरनेट कंपनियों के कर्मचारियों में बढ़ रहे एक्टिविज्म का उदाहरण है। हाल के महीनों में फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियों के कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन किए हैं। गृह युद्ध में घिरे यमन में काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने चेताया है कि 5 साल से कम उम्र के करीब 20 लाख बच्चे कुपोषण से बुरी तरह पीड़ित हैं। बच्चों के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूनिसेफ का कहना है कि इतनी जानें बचाने के लिए युद्ध विराम के प्रयासों का सफल होना जरूरी है। इसी सप्ताह अमेरिका ने संघर्ष विराम का आह्वान करते हुए कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में बातचीत 1 महीने के भीतर शुरू होनी चाहिए। यमन की सरकार और हूती विद्रोहियों ने इन प्रयासों का स्वागत किया है। यमन में रेड क्रॉस की स्वास्थ्य समन्वयक अविरल पेटरसन ने कहा,
When you imagine conflict, you imagine people being wounded, people being killed, but people are dying of lack of clean water.
जब आप हिंसक संघर्ष की कल्पना करते हैं तो आप मर रहे और घायल हो रहे लोगों की कल्पना करते हैं, लेकिन यहाँ लोग साफ पानी की कमी, आधारभूत ढांचे के अस्त व्यस्त हो जाने से मर रहे हैं। यहाँ हैजा फैल रहा है और इसे रोका जा सकता है। टीकाकरण ना होने की वजह से बच्चे डिप्थेरिया और खसरा जैसी बीमारियों से मर रहे हैं। रेड क्रॉस की अविरल पेटरसन के शब्द। श्रीलंका में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए सोमवार को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। हटाए गए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस कदम का स्वागत किया है। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने बीते सप्ताह विक्रमासिंघे को पद से हटाकर पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। विक्रमसिंघे ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा था कि संसद में बहुमत उनके पास है। इसी बीच चीन ने महिंदा राजपक्षे की वित्तीय मदद करने के आरोपों का खंडन किया है। श्रीलंका में कई सांसदों ने पार्टियां बदली हैं, जिसके बाद सांसदों की खरीद फरोख्त के आरोप लगे थे। भारत और चीन दोनों की नजरें श्रीलंका के राजनीतिक घटनाक्रम पर बनी हुई हैं। दोनों ही देश श्रीलंका के विपक्षी खेमों का समर्थन कर रहे हैं। 11 साल के अंतराल के बाद मैसेडोनिया और ग्रीस के बीच यात्री उड़ानें शुरू हो गई हैं। एजियन एयरलाइंस ग्रीस की राजधानी एथेंस और मैसेडोनिया के बीच हर मंगलवार और गुरुवार को उड़ान भरेगी। ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध जांच एजेंसी ने एक ब्रितानी व्यापारी के खिलाफ यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए हुए जनमत संग्रह के अभियान के दौरान किए गए संदिग्ध अपराधों के लिए जाँच शुरू कर दी है। एरॉन बैंक्स पर यूरोपीय संघ को छोड़ने के समर्थन में अभियान चला रहे एक समूह को आर्थिक मदद देने के आरोप हैं। बैंक्स अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारते रहे हैं। उन्होंने जांच का स्वागत किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। उत्तर भारत में पारा नीचे जाने लगा है, लेकिन आज भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली दौरे ने यहां सियासी गर्मी बढ़ा दी है। नायडू के दौरे का मकसद बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर लाना है। उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोपहर बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मिले। इन मुलाकातों में क्या कुछ हुआ, सुनिए बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
गुरुवार को दिल्ली में हुई बैठकों के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू खासतौर पर आज सुबह ही दिल्ली पहुंचे थे। शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला से सुबह मुलाकात करने के बाद वो राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंचे। हालांकि टीडीपी और कांग्रेस दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन हाल के दिनों में ये चर्चा रही है कि अगले साल आंध्र प्रदेश में होने वाले सूबाई चुनाव के लिए दोनों साथ आ सकते हैं। तेलंगाना में हो रहे चुनाव के लिए दोनों में पहले से ही समझौता हो गया है। राहुल गांधी ने नायडू के साथ बैठक के बाद बाहर आकर कहा,
वी हैड ए पास्ट एज यू मेंशन्ड, बोथ ऑफ अस अग्रीड दैट वी आर नॉट गोइंग टू,
हमारा एक इतिहास रहा है लेकिन हमने तय किया है कि हम उसकी तरफ रुख नहीं करेंगे और वर्तमान और भविष्य के लिए मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हमारा देश बहुत नाजुक घड़ी से गुजर रहा है। राहुल गांधी के इस बयान से समझा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में दोनों के बीच चुनाव को लेकर समझौता अब तय है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नायडू प्रदेश में कांग्रेस को राजनीतिक जमीन मुहैया करवाकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। प्रदेश की 25 लोकसभा और 125 विधानसभा सीटों में फिलहाल कांग्रेस के पास एक भी मौजूद नहीं है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के अलग होने के बाद बीजेपी और जगन मोहन रेड्डी के बीच चुनावी समझौते की चर्चा गर्म है। राहुल ने इस सवाल पर कि राष्ट्रव्यापी विपक्षी दलों वाले गठबंधन का चेहरा कौन होगा, किसी तरह का सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा इन सब सवालों का जवाब वक्त के साथ मिल जाएगा। चंद्रबाबू नायडू का कहना था,
यू आर इंटरेस्टेड इन कैंडिडेट्स, वी आर इंटरेस्टेड इन द नेशन, रिमूव दैट इन योर माइंड फर्स्ट। You also think nation...
आपकी दिलचस्पी उम्मीदवार के नाम में है, हमारी देश को बचाने में। हम पहले देश की संस्थाओं को, लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, फिर बाकी बातों के बारे में सोचेंगे। ये थे चंद्र बाबू नायडू के शब्द। नायडू ने कहा कि वो गठबंधन के सिलसिले में तमिलनाडु के दल डीएमके से भी भेंट करेंगे। एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बार है जब चंद्र बाबू नायडू दिल्ली आए हैं। पिछले दौरे में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और बीएसपी प्रमुख मायावती से मुलाकात की थी। तय कार्यक्रम के मुताबिक इस बार वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से भी मिलने वाले हैं। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
चंद्रबाबू नायडू गठबंधन के गणित को साधने का हुनर जानते हैं। वो ये खूबी एनडीए के साथ रहते हुए भी दिखा चुके हैं, लेकिन अभी हालात कुछ अलग हैं। ऐसे में क्या वो बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने वाले सूत्रधार की भूमिका में खरे उतर सकते हैं? मैंने ये सवाल किया टीडीपी की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक से।
एक बात नोट करने की है कि इससे पहले भी कुछ महीनों में अलग अलग कोशिशें हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दूसरे विपक्षी दलों को एकजुट करने की, लेकिन आपने देखा होगा कि किसी भी और कोशिश पे उतनी शायद हलचल नहीं मची है जितनी अब चंद्रबाबू नायडू के मैदान में उतरने के बाद मची है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये नजर आता है कि चंद्रबाबू नायडू की एक छवि है और उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है कहा कि अलायंसेस बनाने में। समझा यही जा रहा है कि अब जब वो मैदान में उतरे हैं तो काफी असर पड़ सकता है कि वो तमाम पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा अंतर यह है कि पहली मर्तबा चंद्रबाबू नायडू ने सीधे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से सारे मुद्दों पर बातचीत की। इससे पहले किसी मोर्चे के बनाने में इस तरह की कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू के बीच में कोई संपर्क नहीं था, और ये सबसे शायद नाटकीय मोड़ है इस घटनाक्रम का। आप जानते हैं कि तेलुगुदेशम पार्टी का जो प्लैंक है वो है कांग्रेस विरोधी राजनीति।
क्या चंद्रबाबू नायडू की नजर दिल्ली पर है, 2019 का आम चुनाव है, या तेलंगाना में हाल में जो चुनाव होने वाले हैं उस पे नजर है, उसके बाद आंध्रा में भी चुनाव होने हैं, नजर कहाँ है उनकी असल?
देखिए इस वक्त वक्त चंद्रबाबू नायडू को एक बहुत ही गंभीर चुनौती का सामना है खुद उनके अपने राज्य में। वो इसलिए है कि जब से उन्होंने इस साल मार्च में एनडीए से अलाहदगी इख्तियार की, एनडीए से अपने आप को अलग किया और भारतीय जनता पार्टी से उनका टकराव शुरू हुआ, तब से क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो उस सरकार के साथ उनका टकराव हो रहा है और बीजेपी के नेता लगातार उन पर दबाव डाल रहे हैं राजनीतिक, और तेलुगुदेशम पार्टी की सरकार को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। कि दो आप उदाहरण देख सकते हैं, एक तो यहाँ पे जो विपक्षी दल है आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, उसकी और बीजेपी के बीच में गठबंधन होता दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो चुनावों में तेलुगुदेशम पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। दूसरा, लगातार तेलुगुदेशम पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके घरों पर, उनकी कंपनियों पर, उनके व्यापार पर इनकम टैक्स के धावे चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू का यह कहना है कि सारे शक्तियां मिलकर उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं राजनीतिक, उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से अब जो अचानक ये चंद्रबाबू नायडू ने कदम उठाया है कि वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, भविष्य को बचाने के लिए काम करना चाहते हैं, असल उसका उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जो उनको लगातार खतरा बढ़ रहा है अपने घर के अंदर, उस लड़ाई को वो अब भारतीय जनता पार्टी के खैमे में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जानते हैं एक अनुभवी राजनेता के रूप में कि इससे बेहतर उनको कोई और अवसर नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, आप जो देख रहे हैं कि सीबीआई के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उनसे उनको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जबकि वो दूसरे तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट कर सकते हैं और उन सबको मिला के सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं। तो ये उनका बुनियादी उद्देश्य है। रहा तेलंगाना का मामला, तेलंगाना एक अलग राज्य है, यहाँ की राजनीति भी अलग है। यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र समिति बहुत अब तक शक्तिशाली रही है, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी और तेलुगुदेशम पार्टी का गठबंधन हुआ है वो भी परेशान है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि तेलंगाना इस वक्त तेलुगुदेशम और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो दोस्ती बन रही है, जो गठबंधन हो रहा है, उसकी पहली लेबोरेटरी है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक। अगली खबर भारत के एक और दक्षिणी राज्य कर्नाटक से, जहां 3 नवंबर को लोकसभा की 3 और विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यहां रामनगरम विधानसभा सीट पर चुनाव के पहले ही बीजेपी को झटका लगा है। मतदान से सिर्फ 48 घंटे पहले पार्टी उम्मीदवार ने चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया है। पूरी रिपोर्ट इमरान कुरैशी से।
ऐसा शायद कभी ही हुआ हो कि मुख्य प्रतिद्वंद्वी चुनाव के 48 घंटे पहले चुनाव मैदान से हट जाएं, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार एल चंद्रशेखर की कहानी कुछ अलग है। चंद्रशेखर चुनाव से पहले कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन जब कांग्रेस ने अपने गठबंधन भागीदार जनता दल सेकुलर को रामनगरम की सीट दे दी तो नाराज चंद्रशेखर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने भी उन्हें अपना लिया क्योंकि उन्हें रामनगरम क्षेत्र में कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं दिखा। कारण साधारण है, रामनगरम ऐसा क्षेत्र है जहां सिर्फ कांग्रेस और जेडीएस के बीच चुनावी जंग चलती आ रही है और बीजेपी को पैर रखने की भी जगह नहीं मिली है। बहरहाल चंद्रशेखर मैदान से हटने का कारण इस तरह समझाते हैं। चुनाव से पहले हमें बोला गया था कि चुनाव का खर्च और सारी जिम्मेदारी सीपी योगेश्वर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि गठबंधन सरकार गिर जाएगी। बीजेपी के नेता आर अशोक मंडिया जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन रामनगरम नहीं आते जो रास्ते में ही है। हर जगह हमें मतदाता और मीडिया ये पूछते रही कि बीजेपी के नेता तुम्हारा प्रचार करने क्यों नहीं आ रहे हैं। ये थे एल चंद्रशेखर के शब्द। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सदानंद गौड़ा ने चंद्रशेखर को द्रोही बुलवाया और कहा, पक्ष में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, लेकिन ये जो आए हैं वो द्रोही हैं और कांग्रेस का द्रोही का खून उनमें है, इसीलिए वो कांग्रेस के धन शक्ति के शिकार बन गए हैं। समाज और भगवान भी उन्हें माफ नहीं करेगा। ये थे सदानंद गौड़ा के शब्द। रामनगरम क्षेत्र से पिछले मई के चुनाव में मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने बड़ी बहुमत से जीत हासिल की थी, लेकिन कुमार स्वामी ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया और बगल वाली चनपटना क्षेत्र की सीट रख ली। इस बार उनकी पत्नी अनीता कुमार स्वामी को इस उपचुनाव में उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस गठबंधन को मजबूत करने के लिए जेडीएस को इन उपचुनावों में मंड्या शिमोगा के लोकसभा क्षेत्र और रामनगरम विधानसभा क्षेत्र में समर्थन दे रही है और जेडीएस कांग्रेस को बल्लारी लोकसभा क्षेत्र और जमखंडी विधानसभा क्षेत्र में समर्थन दे रही है। इस सारे मामले पर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और जैन विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉ संदीप शास्त्री कहते हैं,
स्पेशली बीजेपी को आज लगेगा कि जनता दल कांग्रेस कोलिशन से हमें इसका एडवांटेज हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये दोनों पार्टियों का कंसोलिडेशन ऑफ वोट बैंक इन एरियाज में हो सकता है। सो आई थिंक बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो थी कि फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स ऑफ द डिसिडेंट्स ऑफ दीज टू पार्टीज, उसका असर तो रामनगरम में क्लियरली बैकफायर हुआ है। इस बाय इलेक्शन में देखना पड़ेगा क्या मंडिया में और शिमोगा में इसका कोई पॉजिटिव बेनिफिट उसको मिलेगा या नहीं।
दरअसल उत्तर कर्नाटका के बेल्लारी लोकसभा क्षेत्र और जमखंडी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता उतना नाराज नहीं है, क्योंकि वहां जेडीएस की जड़ें उतनी मजबूत नहीं है जितने पुराने मैसूरू इलाके में। तो अगले हफ्ते ये देखने मिलेगा कि क्या कर्नाटका के राजनीति में सचमुच बड़ा मोड़ होगा या नहीं। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने देश के राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए संसद का सत्र बुलाने का फैसला किया है। बीते हफ्ते राष्ट्रपति सिरीसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे को हटा दिया था। उनकी जगह महिंदा राजपक्षे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, लेकिन विक्रमासिंघे ने अपनी बर्खास्तगी को असंवैधानिक बताते हुए सरकारी घर छोड़ने से इनकार कर दिया। उनका दावा है कि संसद में उनका बहुमत है। संसद की बैठक सोमवार को होगी। ताजा घटनाक्रम पर अब से कुछ वक्त पहले मैंने बात की श्रीलंका की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार एस वेंकट नारायण से।
मेरा ख्याल से इसके दो कारण हैं। एक ये है कि दबाव काफी, यूनाइटेड स्टेट्स, भारत और यूरोपियन यूनियन वगैरह सब लोग कह रहे थे कि भाई आप जो भी कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कानूनन होना चाहिए। ये मेजॉरिटी फिलहाल तो 104 करीब सीट्स विक्रमसिंघे के पास हैं, राजपक्षा के पास सिर्फ 99 कुछ ऐसा है। बात यह है कि कम से कम 22 लोग ऐसे हैं जो इधर या उधर जा सकते हैं, और ऐसा हुआ महिंदा राजपक्षा तमिल नेशनल अलायंस के नायक संपन्न को रिक्वेस्ट करके अपने घर बुलाए थे और बातचीत हुई थी। तो उनके पास 16 सीट्स हैं, वो अगर राजपक्षा मना पाएंगे तो उनको मेजॉरिटी आसानी से मिल जाएगी। फिलहाल विक्रमसिंघे कहते हैं कि मैं अभी भी प्रधानमंत्री हूँ, और पार्लियामेंट में जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने लग जाएगा, ये हमको याद रखना जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर के सीट पे राजपक्षा बैठेंगे, विक्रमसिंघे नहीं बैठेंगे। 225 सदस्य होते हैं पार्लियामेंट में, वहाँ कम से कम 100 लोग ऐसे होते हैं मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जूनियर मिनिस्टर, पोजीशंस ऑफ पावर देते हैं, उनको गाड़ियां देते हैं, उनके काफी सहूलत देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये राजपक्षा कर सकते हैं। इस तरह लालच दे के जो लोग अभी निर्णय लेना बाकी रह गए हैं, जो लोग यूएनपी में हैं, उनको शायद उनके तरफ कर लेंगे।
यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अभी भले ही दोनों पक्ष बहुमत होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सोमवार को जब संसद का सत्र होगा उस समय राजपक्षे की स्थिति मजबूत नजर आती है।
बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे इसमें आश्चर्य नहीं होगा अगर राजपक्षा, ये 24 घंटे पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी ये जानते हैं कि भाई अगर ये कह रहे हैं कि अगला चुनाव हम जितना जल्दी करें तो उतना जल्दी हम तैयार हैं, क्योंकि उनको इतना आत्मविश्वास है जब भी पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे, चुनाव होंगे, या ये अपना पार्टी जीत आगे आ जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि पल्ला राजपक्षा के तरफ है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार एस वेंकट नारायण।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
अगली खबर बिहार से। शेल्टर होम मामले को लेकर चर्चा में रही बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा अब भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। उनके खिलाफ बेगूसराय की एक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसे 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कड़ी टिप्पणी कर चुका है। पुलिस और राजनीतिक दलों का इसे लेकर क्या कहना है, सुनिए पटना से मनीष शांडली की रिपोर्ट।
सीबीआई द्वारा 17 अगस्त को मंजू वर्मा के घर पर छापेमारी में अवैध कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में सीबीआई ने मंजू वर्मा के साथ उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर भी एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही मंजू वर्मा फरार हैं। इसी मामले में कल बेगूसराय जिले के मंझोल कोर्ट ने मंजू वर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। उनके पति ने इसी मामले में सोमवार को सरेंडर किया था। बेगूसराय जिले के एसपी अवकाश कुमार ने बीबीसी को बताया कि पुलिस मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।
छापेमारी हो रही है और पता लगा रहा है। पति को रिमांड पे लिया गया, उनसे पूछताछ हो रही है। इनके जो संभावित कुछ ठिकाने थे वहाँ पे देख लिया गया है, वहाँ तो नहीं है। अभी एसआईटी है, महिला थाना प्रभारी है, उसमें एसएचओ चरिया बरियारपुर है।
मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में अपने पति का नाम आने के बाद मंजू वर्मा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होने के कारण विपक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे निशाने पर ले रहा है। जैसा कि विधायक और प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र कहते हैं,
मंजू वर्मा को सरकार शेल्टर दी हुई है कि प्रशासन के लोग मुख्यमंत्री के डर से उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं और हमको लगता है उनका राज खत्म हो गया है। इनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
वहीं सत्तारूढ़ जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि मंजू वर्मा मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेगी।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने स्वीकारोक्ति हलफनामे के माध्यम से अपनी बात को स्वीकार किया है। माननीय मंजू वर्मा जी के बारे में तो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, उसका अक्षरशः अनुपालन भी किया जाएगा। महत्वपूर्ण है कि कानून का अनुपालन करना देश के हर नागरिक को आवश्यक है। जो पुलिस प्रशासन का ये नैतिक दायित्व है, हम उस नैतिक दायित्व का पालन करेंगे।
इस बीच बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश कुमार ठाकुर को पंजाब के पटियाला जेल शिफ्ट करने के लिए कल रात ट्रेन के रास्ते उन्हें अमृतसर भेजा गया है। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
आज गुरुवार है और आपको इंतजार होता है अपने पत्रों का, तो सुनिए आपकी राय।
आपकी राय आज मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपके साथ मोहनलाल शर्मा और मेरे साथ आज सूर्यांशी पांडे। मुस्कुरा रही हैं सूर्यांशी?
मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि श्रोता मोहनलाल सर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे।
क्या बात,
आपके
है?
नाम पर खत आ रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिर कहाँ है मोहनलाल, तो देखिए आज यहाँ है आपकी राय में।
बिल्कुल, और इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो जो ये सवाल आपने पूछा कि कहीं गायब तो नहीं हो गए, नहीं भाई कहीं बिल्कुल गायब नहीं हुए, आपके बीच में है और बीबीसी में ही है। बस अंतर सिर्फ ये है कि कुछ और नए कार्यक्रमों के निर्माण से इस समय जुड़े हुए हैं। कैसे अच्छे कार्यक्रमों का निर्माण किया जाए, उसी दिशा में थोड़ा सा बीबीसी हिंदी रेडियो पर आप जिसे कहते हैं ना सुनाई नहीं दे रहे, लेकिन देखिए सुनाई दे रहे हैं, आपकी चिट्ठियों के साथ हैं आज।
और आज आपकी राय में सबसे पहला खत जो है मोहनलाल जी, इनका नाम है मदन मिश्र, लेकिन मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि अपनी लिखाई में थोड़ा सा अंतर लेकर आए क्योंकि हम उनका पता नहीं बता पा रहे हैं,
मतलब शब्दों को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं कि लिखा कहां से गया है।
लेकिन ये जो लिखते हैं उसको हमने डिकोड कर लिया है,
भाव समझ लिया है।
ये लिखते हैं कि कल शाम और आज प्रातः काल की सभा में जो बीबीसी हिंदी पर जनरल जिया उल हक के जानकारी के बारे में पता चला, जो सुना वो बहुत अच्छा लगा उन्हें।
ये रिहान फजल की विवेचना थी और जब भी रिहान फजल कोई विषय उठाते हैं तो वो इतनी तह तक और उसकी बारीक पड़ताल होती है कि जो श्रोता होते हैं या हम भी जब सुन रहे होते हैं ना, तो उसमें न सिर्फ ज्ञान वर्धन होता है बल्कि ऐसी ऐसी चीजें हमें मालूम चलती हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें पहले से पता नहीं थी। तो आपको एक कार्यक्रम अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
ये अगला जो खत जिन्होंने भेजा है ये लिखते हैं जिला रांची से, झारखंड से, ग्राम डिमरी है, लेकिन अपना नाम शायद लिखना इस बार भूल गए हैं मोहनलाल जी।
नहीं, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके बीबीसी हिंदी सेवा सुनने वाले नियमित श्रोतागण सुनवो मुंडा, हीरा लाल मुंडा, खुदी राय,
अपने दोस्तों का नाम लिख दिया है
ना, सारे राजेंद्र मुंडा और पूरे समस्त मुंडा परिवार का इन्होंने नाम लिखा है।
इनका ये कहना है कि ये सुबह जो है अपने दफ्तर जाते हैं, काम पर जाते हैं, जिसकी वजह से ये नमस्कार भारत जो है वो सुन नहीं पाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि समय दोनों बार सुनाया जाए या समय थोड़ा बदलाव हो सके उस पर।
यदि आप इस कार्यक्रम को नहीं सुन पाते हैं तो bbchindi.com पर अगर आप जाएंगे तो इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं, यानी कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम वहां पर रहता है और वो तब तक रहता है जब तक अगले दिन का कार्यक्रम उस पर चढ़ नहीं जाता। तो इस कार्यक्रम को आप उस समय नहीं सुन पाए, आप वेबसाइट पर जाएं, वहां क्लिक करें, नमस्कार भारत आपको दोबारा सुनाई देगा।
अब हम ईमेल्स पर जाते हैं और ये पहला ईमेल हमें भेजा है अंकित नायक ने और ये जबलपुर से लिखते हैं। इनका ये कहना है कि बीबीसी हिंदी से दिन भर कार्यक्रम ये पूरा परिवार इनका सुनता है और वो इस कार्यक्रम से और उनका परिवार इस कार्यक्रम से तब से जुड़ा हुआ है जब वो शायद जन्मे भी नहीं थे और अब वो 27 वर्ष के हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपके वहाँ पर देवकी नंदन पांडे जी एक हुआ करती थी, उनकी गूंजती आवाज़ आज भी उन्हें याद है और वो कहते हैं कि रेहान फजल जी की आवाज़ उन्हें बेहद पसंद आती है और कुलदीप मिश्र की आवाज़ के बारे में वो ये कहते हैं कि कुलदीप सरदार हुआ करते थे, उनकी श्रेणी में कुलदीप मिश्र की उन्हें आवाज लगती है,
झलक लगती है। हाँ। जहां तक अगर मैं याद करूं तो देवकी नंदन पांडे साहब का जो नाम है वो बीबीसी से नहीं, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, ये ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा हुआ नाम है। रही बात रेहान फजल की, वो तो बीबीसी के कार्यक्रमों के जरिए आपसे जुड़े ही रहते हैं। कुलदीप मिश्र की आप तारीफ कर रहे हैं, आपकी ये जो तारीफ है वो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचा देते हैं।
दूसरा ईमेल गौतम दत्ता ने भेजा है किशनगंज बिहार से और ये लिखते हैं कि संदीप सोनी ने दुनिया जहां में श्रीलंका में संकट के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया और बेहतरीन तरीके से तथ्यों के साथ बताया।
संदीप सोनी दुनिया जहां जब भी करते हैं तो दुनिया जहां का जो मकसद होता है वो एक ऐसे विषय को उठाना होता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसमें समसामयिक तरीके से रुचि पैदा होती है और तमाम वो उलझे हुए सवाल जिन्हें आप समझना चाहते हैं उसको हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो संदीप सोनी इस मकसद में कामयाब हुए, यही इस कार्यक्रम की खूबसूरती है।
और आदर्श राठौर जी ने प्रसारित किया था नमस्कार भारत में कार्यक्रम कमलेश के साथ जिसका नाम था स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी तो उसमें काफी तारीफें आई हैं। गणेश प्रसाद हुजदार ने उस रिपोर्ट की तारीफ की है, उसके बाद आगे बढ़े तो डॉक्टर हेमंत कुमार ने भी इसकी तारीफ की है जो जिला भागलपुर से लिखते हैं।
स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण अभी ही हुआ है, हाल ही में हुआ है, उसकी जो तथ्यपरक जानकारियां आपको पसंद आई, हमारा मकसद कामयाब हुआ। और सूर्यांशी अब हमें ये नहीं लगता है कि और चिट्ठियां नहीं ले पाएंगे, चलते चलते कार्यक्रम का पता बता दें, आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 3035 नई दिल्ली 110003 और यदि आप हमें मेल भेजना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk पर भेजें। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, आपकी राय लेकर हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक मुझे यानी कि मोहनलाल शर्मा और सूर्यांशी पांडे को विदा दें, नमस्कार।
नमस्कार।
और अब बात भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज हुए वनडे मैच की। स्टूडियो में मौजूद हैं इंदु पांडे मैच के अपडेट के साथ। जी इंदु जी,
वात्सल्य अगर मैच आपने देखा होगा तो आपको भी पता होगा कि आज का मैच तो मतलब चुटकी में खत्म हो गया
जी, और आज 100 ओवरों का मैच था जो 47 ओवर में ही खत्म हो गया।
बिल्कुल, तो इस तरह से पांचवें वनडे मैच में वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से हरा करके भारत ने 5 वनडे मैचों की सीरीज को 3-1 से जीत लिया है। रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने पहले वेस्ट इंडीज को 104 रन पे आउट कर दिया और फिर इस स्कोर को सिर्फ 14.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पे हासिल भी कर लिया। तो इसके ऊपर भारत ने क्या सीखा, एक नजर क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली से।
आज भी भारतीय बल्लेबाजी बहुत कुछ डिपेंड करती है विराट पे, वो कैसे आके संभालते हैं। ओपनर्स आपको कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है, रोहित शर्मा का फॉर्म अच्छा है आपको आने वाली सीरीज के लिए, बुमराह जिस ढंग से उन्होंने बॉल डाली सीरीज में वो आप कह सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, लेकिन भुवनेश्वर थोड़ा रस्टी लग रहे हैं, वो अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं थे, पर ओवरऑल भारत ने अपनी रेपुटेशन के हिसाब से खेला और मैं कहूंगा वेस्ट इंडीज ने भी अपनी रेपुटेशन के हिसाब से खेला कि वो एक स्ट्रगलिंग टीम है।
तो
जी लोकपल्ली जो बात कर रहे हैं वो पूरी सीरीज की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के मैच में तो पूरा दबदबा रहा और पिच भी अच्छी थी, रोहित शर्मा ने जिस तरह से बल्लेबाजी की
मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि बस एक ही टीम दौड़ रही है, दूसरी टीम बस देख रही है शायद,
दौड़ना शुरू किया और रुक गई। बहुत शुक्रिया इंदु पांडे। और अब चलते चलते मुख्य समाचार सर्वप्रिया सांगवान से।
बीबीसी समाचार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि तेलुगुदेशम पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने इस गठबंधन को लोकतांत्रिक मजबूरी बताते हुए कहा कि देश और लोकतंत्र बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेट कंपनी गूगल के कर्मचारियों ने कंपनी के दुनिया भर के दफ्तरों के बाहर महिला कर्मचारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। गृह युद्ध में घिरे यमन में काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने चेताया है कि 5 साल से कम उम्र के करीब 20 लाख बच्चे कुपोषण से बुरी तरह पीड़ित हैं। श्रीलंका में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए सोमवार को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। हटाए गए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस कदम का स्वागत किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।